आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद के तीन दिन के विशेष सत्र के बारे में, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से जुड़े तीन खास कानूनों पर चर्चा हो रही है। ये कानून है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026। मैं हूं अनुभा रोहतगी और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं आकाशवाणी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। उमेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद, नमस्कार।
और कार्यक्रम में सबसे पहले सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय इस विषय पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं।
परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध है। और माननीय मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्वों का महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। माननीय ये तीन विधेयकों में धैर्य रखो भैया, धैर्य अकेले से समझाओ जरा। माननीय ये तीन बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। माननीय ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं, किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए।
तो उमेश जी, अभी हमने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोकसभा में अपना बात कर रहे, अपनी बात रख रहे हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर, विधेयक पर, जिस पर आज मतदान भी होना है। और उन्होंने सीधे सीधे, हमने जो भी अभी सुनी बात, सीधे सीधे विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि विरोध जो हो रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, बल्कि विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का विरोध है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, महिला आरक्षण का विरोध तो है ही, लेकिन इसमें कुछ बातें ये सब भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे विपक्ष को सबसे बड़ी आपत्ति ये रही है कि 2023 में जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया था तो उसको क्यों नहीं लागू किया गया। हालांकि सरकार का तर्क यह है कि अगर हम 2000, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 2011 का नहीं 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और उसके आधार पर आरक्षण लागू हो, लेकिन उसमें एक तकनीकी दिक्कत है जिसकी ओर अभी डिबेट में भी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि अपने जवाब में गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, जो दो दिनों से बहस चल रही है लोकसभा में, तो उसका ये जवाब दे रहे हैं, इस जवाब के बाद ही वोटिंग होगी, तो उसमें ये जरूर बताएंगे। लेकिन ये चर्चा हुई है कि उसमें एक बड़ी दिक्कत है कि अगर 2026 के जनगणना के नतीजों के आंकड़ों के बाद जब परिसीमन होगा तो 2029 में परिसीमन लागू नहीं होगा।
बिल्कुल, और यही
क्योंकि इसमें लंबी वो लगता है, टाइम लगता है, लंबा वक्त लगेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि विपक्ष को भी बहुत बड़ा एक जो मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि बीच चुनाव में अभी दो राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। और ये सही है कि जो भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से तो कदम उठाती है, तो ओबियस है, भले रिकॉर्ड पर कोई स्वीकार करे या चाहे ना करे। और विपक्ष जो होता है वो सरकारी जो पक्ष को जो फायदा मिलना होता है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है। तो विपक्ष का आरोप भी कोई बहुत इस तरह से देखें तो राजनीतिक परिपाटी के हिसाब से नया नहीं है। लेकिन कुछ जो तार्किक बातें हैं, उन तार्किक बातों में जैसे विपक्ष कह रहा है कि अगर परिसीमन होगा, खासतौर पर दक्षिण के राज्यों ने जिस तरह से सवाल उठाया है कि अभी तक उनके पास 129 सीटें हैं और उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी, और उनका एक तर्क है कि हमने अगर जनसंख्या नीति को ठीक से लागू किया तो क्या हमने कोई गड़बड़ी की है। लेकिन एक चीज ये है कि अब भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2.1 पर आकर के टिक गई है, मतलब प्रति दंपति 2.1 आ गया है। लेकिन ये भी है कि 1952 में जो पहले चुनाव हुए थे और उसके हिसाब से जो सीटें बनी थी, तो उस समय हिंदी भाषी जो क्षेत्र है जिसको पर आरोप लगाता है दक्षिण भारत के लोग, वो जो आनुपातिक रूप से देखेंगे वो दक्षिण के मुकाबले में उतना प्रतिनिधित्व उसका नहीं था। और इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने, हालांकि जब ये बात चली थी तो उन्होंने एक सवाल भी उठाया था।
जी उमेश जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी और अब सीधे दोबारा चलते हैं लोकसभा और सुनते हैं कि गृहमंत्री क्या कह रहे हैं।
सीमन में लेना होता है क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर इस सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा।
जी तो जैसे भी हम सुन रहे थे उमेश जी, गृहमंत्री ने कहा कि जो विपक्ष का, वही आप जो बात कर रहे थे कि विपक्ष का सबसे बड़ा जो एक आपत्ति है उनको यही है कि इस वक्त ही क्यों लाया जा रहा है। और तो उन्होंने बताया कि ये महिला सशक्तिकरण और संतुलित संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही करा गया। बहुत क्विक कमेंट चाहूंगी आपसे।
देखिए, ये निश्चित तौर पर जो विवाद जो हो रहा है वो चुनाव के बीच में सवाल उठाने से हो रहा है, अन्यथा मुझे लगता है कि महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी दल, ये कैसी आंच है ना कि इसमें अपना हाथ कोई जलाना नहीं चाहेगा। तो बस इसीलिए ये तार्किक ढंग से, मतलब एक छोटे से मामले में आप देख लीजिए कि थोड़े से मामले में सब चाहते हैं कि जो परिसीमन का कहीं फायदा या कहीं नुकसान जो भी है अपने अपने हिसाब से हर दल उठाना, या नुकसान की आशंका के चलते ये सवाल और जवाब हो रहे हैं और उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी जो नतीजे आएंगे खासतौर पर मतगणना जो होगी वोटिंग के बाद यहां की, तो उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या होगा राजनीतिक समीकरण। लेकिन ये तय है कि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों के लिए ये घड़ी बहुत आसान नहीं रह गई है। अगर विरोध करेंगे और अगर विधेयक ये पारित हो जाएगा तो दोनों के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए शायद कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप सब लोग समर्थन दीजिए, मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं।
जी। और इस चर्चा को फिलहाल हम अभी यहीं पर खत्म करेंगे।
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।